तीर्थ नायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्योजेने नमो कुंद कुंदनी अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो।
अभी दोपहर के सत्र में ये पहले व्याख्यान में 47 शक्ति के विषय पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री को जैसे ये 175 बोल हैं जिनका वो रोज सुबह पाठ करते थे, चिंतन मनन करते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव को यदि इन 175 बोलों में भी सबसे अधिक कोई चीज पसंद थी तो वो ये 47 शक्तियां हैं। आगम महासागर है, उसमें से 175 रत्न छांटे, 175 रत्नों में से भी ये 47 रत्न पूज्य गुरुदेव श्री के चिंतन में आए। यही कारण है कि 47 शक्तियों के व्याख्यान में पूज्य गुरुदेव श्री जितने मुखर होते थे, जितने आनंदित होते थे, उनके व्याख्यानों में वो स्पष्ट झलकता है। 47 शक्तियों के तो 47 नाम हैं और आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 पंक्तियों में, छोटी छोटी सी पंक्तियां हैं, सूत्र हैं, सूत्र वाक्य, जैसे तत्वार सूत्र के सूत्र है ना, ऐसे ये 47 शक्तियों के 47 सूत्र हैं। कोई सूत्र थोड़ा बड़ा है, कोई सूत्र तो एकदम छोटे भी हैं, कोई मध्यम आकार के हैं। जैसे पहली शक्ति है थोड़ी सी विस्तृत है, थोड़ी उससे भी थोड़ी विस्तार वाली एक दो तीन शक्तियां हैं, लेकिन दूसरी शक्ति एकदम छोटी सी है, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। ऐसे बहुत छोटी छोटी सूत्रों में अमृतचंद्र देव ने इन शक्तियों की व्याख्या की है, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने इन छोटी छोटी सी पंक्तियों पर भी पूरा घंटे भर का व्याख्यान गुरुदेव श्री ने एक एक शक्तियों पर किया है। यदि हम देखें तो 19 बार गुरुदेव श्री के व्याख्यान शास्त्र सभाओं में हुए, 19 बार ये 47 शक्तियों के व्याख्यान भी हुए ही होंगे, गारंटी है। हमारे पास में जो उपलब्ध हैं 4-5 बार के, उनमें भी 47 शक्तियों के व्याख्यान अलग अलग हमारे को सुनने को भी मिल सकते हैं। अभी हमारे ये भाई साहब कन्नड़ से आए हैं, इन्होंने ये ग्रंथ मुझे दिखाया अभी। ये कौन सा ग्रंथ है बता है आपको? पढ़ना तो आपसे भी नहीं बनेगा, मुझसे भी नहीं बनेगा, कन्नड़ का है। लेकिन ये जो पुस्तक कन्नड़ में प्रकाशित हुई है ये 47 शक्तियों के व्याख्यान की है। हमारे और आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन जो इसके जानकार हैं वो ये जान सकते हैं कि ये क्या चीज है। सैतालीस शक्तियों के व्याख्यान टोटल यदि हम देखें तो 40-40 प्रवचनों में 47 शक्तियों के व्याख्यान गुरुदेव श्री के हुए। 40-40 व्याख्यान माने जब 47 शक्तियों के व्याख्यान गुरुदेव श्री के चलते थे तो मानो महीना महीना निकल जाता था, डेढ़ महीना निकल जाता था और गुरुदेव श्री के बस शक्तियों के व्याख्यान चल रहे हैं। ऐसा मौका आप ऐसा मान के चलो गुरुदेव श्री के 45 साल के इस प्रभावना योग में 19 बार आया। ऐसा मान के चलो कि हर ढाई वर्ष के अंतराल के बाद आया, हर ढाई साल के बाद में पूरे समय सार का व्याख्यान होता था और उसमें परिशिष्ट के व्याख्यान होते थे। परिशिष्ट के व्याख्यान में 47 शक्तियों का एक सत्र हर ढाई साल में गुरुदेव श्री ने अपने 45 साल के प्रभावना योग में चलाया। ये इतने महत्वपूर्ण विषय है और इसमें जो हम ये कहते हैं कि गुरुदेव श्री को इसमें बहुत आनंद आता था, तो मेरा ऐसा कहना है क्यों नहीं आएगा और क्यों नहीं आना चाहिए। 47 शक्तियों के व्याख्यान में यदि गुरुदेव श्री को मजा आता था तो क्यों नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन 47 शक्तियों में किसकी चर्चा है? भगवान आत्मा की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है कि बहु भाई की भाषा में मेरी चर्चा है। माने इसमें जो व्याख्यान है, इसमें जो बात है, वो किसी और की बात नहीं है। ये भगवान आत्मा कोई और भगवान आत्मा की बात नहीं है, मुझ भगवान आत्मा की इसमें बात की गई है और मुझ भगवान आत्मा का परिचय ये 47 शक्तियों के माध्यम से दिया गया है।
हमको तो आनंद उछलती थी।
बताता हूँ। 47 शक्तियां जो हैं, वो 47 ही नहीं हैं। क्या कह रहे हो? 47 शक्तियां 47 नहीं हैं, कुछ कम ज्यादा हैं, कम ज्यादा हैं। आप चाहो तो 47 शक्तियों को और कम कर सकते हो और आप चाहो तो 47 शक्तियों को और बढ़ा सकते हो।
बहुत शिविर लगाना पड़ेगा।
बढ़ाओ तो कहाँ तक बढ़ा सकते हैं बताओ? पूज्य गुरुदेव श्री ने खुद ये 47 शक्तियों को बढ़ा करके 101 शक्तियों तक तो गुरुदेव श्री ने पहुंचा दिया था। अब हमारी आपकी ताकत है कि हम इसको और कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं। यदि इनकी बियॉन्ड लिमिट जाकर के बात करें तो ये 47 शक्तियां ये अनंत शक्तियों के की प्रतिनिधि कुछ शक्तियां हैं। आत्मा की अनंत शक्ति आप ऐसा समझ लो कि एक तरफ अनंत शक्ति और उसकी रिप्रेजेंटेटिव एक शक्ति। ये 47 शक्तियां जो हैं ये 47 अनंत के बराबर है और एक अनंत शक्ति का रिप्रेजेंटेशन एक शक्ति के द्वारा किया है आचार्य ने। क्यों? क्योंकि अभी ये 47 शक्तियां भी यदि हम बहुत थोड़े से यदि और अल्पज्ञानियों की बात करेंगे तो उनको भी ये भारी लगती है। ये 47 शक्तियां, अरे बाप रे, ये भी भारी लगती है। कोई बहुत ज्ञानी हो, विशेष ज्ञानी हो तो उनको ये लग सकता है बस 47 ही बताएं, बस 47 ही बताएं, इससे ज्यादा और नहीं बताते। हम तो और सुनने को तैयार बैठे थे। क्या युग पका है? अमृत चंद्राचार्य ने तो 47 शक्तियां बताई और उनकी एक एक पंक्ति में व्याख्या करी और क्या युग पका है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने एक एक घंटे तक एक एक शक्ति का व्याख्यान किया और ऐसा 19 बार करते रहे। ये जो है कल जाकर के जब थोड़ा और समय बीत जाएगा, यदि हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, हमारे बच्चों के बच्चे बच्चों अपने बच्चों को जब सुनाएंगे, तो कोई शायद विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति महामानव हुआ होगा जिसने इन 47 शक्तियों का व्याख्यान इतने विस्तार के साथ में किया होगा। ये ऐसी वो 47 शक्तियां हैं। यहां इन 47 शक्तियों को ये स्लाइड्स के माध्यम से मैंने कुछ थोड़ी कोशिश की है तैयार करने की, तो उन स्लाइड्स के माध्यम से हम इनकी चर्चा करेंगे। अपनी ये जो किताब है गुरु चिंतन, इसमें भी जो है उन 47 शक्तियों का एक संक्षिप्त में व्याख्यान देखना। मैं तो अभी इस पर वर्कआउट किया जाए रजनी भाई, तो एक एक शक्ति पर हम गुरुदेव के व्याख्यान तो हम सुनते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक एक शक्ति पर गुरुदेव ने एक क्या क्या विशेष बात बताई पॉइंट वाइज। यदि हम एक एक शक्ति पर ढूंढे पॉइंट वाइज, तो एक एक शक्ति के पॉइंट पॉइंट यदि पूरा व्याख्यान लिखने जाए 19 बार के गुरुदेव के व्याख्यान जितने उपलब्ध हैं, 6 बार के व्याख्यान, 5 बार के व्याख्यान, तो उसमें एक एक शक्ति पर 100-100 पेज के व्याख्यान होंगे, 100-100 पेज के व्याख्यान। लेकिन मैं ये कहता हूं यदि हम पॉइंट वाइज भी नोट करें तो एक एक शक्ति पर 200-200 पेज के पॉइंट्स आपको निकलेंगे, इतना इसमें मर्म है। मैं तो ये बताना चाहता हूं यदि हम इन 47 शक्तियों की जो अमृत चंद्राचार्य की 47 पंक्तियां हैं, इन 47 पंक्तियों की भी यदि हम चर्चा ये अपने 7 दिन के शिविर में यदि हम कर लेवे, तो हम समझेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। ये 47 शक्तियों को पर जब व्याख्यान प्रकाशित हुए थे गुरुदेव श्री के, तो सबसे पहले ब्रह्मचारी हरि भाई ने इस पर काम किया था और उसका उस पुस्तक का नाम था आत्म प्रसिद्धि। जो सबसे पहले जो छपी है 47 शक्तियां, जब ये अपने इसका नहीं था रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, नोट करते थे गुरुदेव के व्याख्यान, यहाँ गुरुदेव बोलते थे यहाँ पर वो स्वयं नोट करते थे, कोई शायद शॉर्ट हैंड वाले हों, कोई हों, जैसा कुछ व्यवस्था मुझे नहीं मालूम कैसे होता था, तो उन्होंने जो ऐसा नोट किया था, तो हरि भाई की 47 शक्तियों पर आत्म प्रसिद्धि नाम का इतना मोटा ग्रंथ प्रकाशित हुआ, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ, हिंदी में भी प्रकाशित हुआ। उसके बाद में जब दूसरी बार के ये प्रवचन उनके प्रवचनों से डायरेक्ट लिख करके आए, तो उनका प्रकाशन ये हमारे बताएंगे चेतन भाई, राजकोट से शायद हुआ या कहां से हुआ, भावनगर से हुआ, वो आत्म वैभव के नाम से भी 47 शक्तियों के व्याख्यान प्रकाशित हुए, आत्म वैभव के नाम से। इसलिए मैंने इसे अपने विषय का नाम आत्मा का वैभव, ये नाम हमने इस अपने 47 शक्तियों के व्याख्यान का दिया है। पुस्तक में उसका नाम जो है 47 शक्तियां इस रूप में भी दिया है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, ये 47 शक्तियां कहाँ आई हैं जिनागम में, किसने इसका वर्णन किया है, आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम की, आचार्य अमृतेंद्र देव विरचित आत्मख्याति टीका के अंत में जो परिशिष्ट लिखा गया है, उस परिशिष्ट के आधार पर ये 47 शक्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने तो समय सार की 415 पंक्तियां कहें, गाथाएं कहें, वो लिखी है 415 पूरे समय सार। उस पर अमृत चंद्राचार्य का जब मन हुआ है तो उन्होंने उस पर जो टीका लिखी है जिसका नाम आत्मख्याति है। उसके बाद आचार्यों की परंपरा में जैसे आचार्य हुए, उन्होंने समय सार पर फिर से टीका लिखी, एक नई टीका, एक थोड़ी सी सरल टीका जो सबको बाल बोधनी टीका हो जाए, ऐसी टीका लिखी। वो टीका स्वयं आचार्य जैसे आचार्य ने लिखी, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। उस टीका का नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति टीका है। एक टीका हमको और मिली है रजनी भाई आचार्य, और वो है आचार्य प्रभाचंद्राचार्य। प्रभाचंद्राचार्य ने भी समय सार पर एक टीका लिखी है और वो हमको टीका मिली है भाई साहब, वो है हले कन्नड़ में, उसकी जो लिपि है कन्नड़ नहीं, हले कन्नड़ कोई प्राचीन लिपि में, उसको कन्नड़ की भी प्राचीन लिपि में वो टीका हमको लिखी मिली है, कोल्हापुर के मठ से प्राप्त हुई है। उस पर हम 4-5 साल से कुछ काम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रकाशन भी हो। वो जो है जैसेनाचार्य की टीका से भी सरल टीका है और सरल है। तो वो जो टीका है वो प्रभाचंद्राचार्य की टीका है। ऐसे तो ये आचार्यों का काम हुआ, उसके बाद में समय सार पर बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। माने यदि हम समय सार के कामों की लिस्ट बनाएं तो शताधिक काम इस समय सार पर हो चुका है। शताधिक, शताधिक समझ गए, 100 से ज्यादा। माने जैसे कि हमारे राजमल जी हैं, पांडे राजमल जी, जिन्होंने समय सार पर कलश टीका लिखी। जैसे समय सार नाटक अमृत बनारसी दास ने लिखा, पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान है, ऐसे और भी जो अभी अभी जो हम जिनके नाम सुनते हैं उन लोगों ने काम किया है। सहजानंद जी महाराज हुए हैं, उन्होंने समय सार पर एक सप्तदशांगी टीका लिखी है, बहुत बड़ी टीका है, बहुत जोरदार अच्छी टीका है। गणेश प्रसाद जी वर्णी की एक समय सार पर टीका है, शीतल प्रसाद जी की एक समय सार पर अलग से टीका मिलती है। ऐसे बहुत सारे विद्वानों की टीका है, हमारे डॉक्टर साहब ने एक समय सार पर टीका उनकी आई है। अभी बहुत से काम किए, अपने हेमचंद जी ने समय सार पर काम किया है, उत्तम चंद जी ने समय सार पर काम किया, अलग से काम। इंग्लिश की एक टीका के बारे में आज बताया आपको कि समय सार पर एक इंग्लिश की टीका भी आ चुकी है। ऐसी बहुत सारी टीकाओं पर काम हुआ है और बहुत विद्वानों ने काम किया है। और मेरा ऐसा मानना है रजनी भाई कि अभी भी काम बंद नहीं हुआ है। यदि कोई हिम्मत वाला और कोई आगे आता हो और समय सार पर कोई और नया काम करता हो तो इस समय सार में इतना पोटेंशियल है, इतना माल है कि इस पर मेरा तो एक भाव है, रजनी भाई आप कराओ तो करा दो, करवाऊंगा मैं उसके साथ में। लेकिन ये 47 शक्तियों पर एक पीएचडी कराने का भाव है, पीएचडी, और इस पर इतना पोटेंशियल है इसमें, अरे तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव का पका पकाया इतना माल है कि यदि उसको ही तुम एडिटिंग करो उसका अच्छी तरह से तो ये पूरा एक पीएचडी मुफ्त में ले जाओ। इतना उसमें माल है, 47 शक्तियों पर अकेले एक पीएचडी हो सकती है और उसमें बहुत है माल। अब जो है इसके बाद में जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें एक जब अमृत चंद्राचार्य ने टीका लिखी तो 415 गाथाओं पर व्याख्या करने के उपरांत उनका ऐसा मन हुआ, अमृत चंद्राचार्य का ऐसा मन हुआ कि मैंने ये गाथाओं की व्याख्या, गाथाओं की टीका तो लिख दी, लेकिन फिर भी मेरे को ये समय सार के बारे में कुछ थोड़ा सा और कहने का मन है तो मैं क्या करूं। तो अमृत चंद्राचार्य ने 415 गाथाओं की टीका लिखने के बाद परिशिष्ट के रूप में उन्होंने थोड़ा सा कुछ और भी लिखा, जिसमें उन्होंने अनेकांत की चर्चा करी, स्यादवाद की चर्चा करी। अत्र स्यादवाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपायोपाय भावश्च मनाग भूयोपि चिंत्यते, ऐसा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कुछ ऐसा लगा होगा शायद, अमृत चंद्राचार्य को खुद ऐसा लगा होगा थोड़ा कि मैंने ये समय सार की टीका लिखी है और समय सार में आत्मा आत्मा की बात की गई है, निश्चय ने की प्रधानता से बात की गई है, तो कहीं जीवों को ये निश्चय नय का कुछ अतिरेक ना हो जाए, ऐसा अमृत चंद्राचार्य को भाव आया होगा, इसलिए तो उन्होंने लिखा। क्या लिखा? अत्र स्यादवाद शुद्ध्यर्थम। क्या? स्यादवाद की सिद्धि के लिए नहीं, मैं स्यादवाद की सिद्धि के लिए ये परिशिष्ट नहीं लिख रहा हूं, काय के लिए लिख रहा हूं, मैं स्यादवाद की शुद्धि के लिए लिख रहा हूं, विशुद्धि लब्धि बढ़ाने के लिए हमारी। अत्र स्यादवाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति, और वस्तु तत्व की व्यवस्था बताने के लिए, और उपायोपाय भावश्च, और थोड़ी चर्चा मोक्ष मार्ग की, थोड़ी चर्चा मोक्ष की, उपाय की चर्चा, मोक्ष मार्ग की चर्चा, उपेय की चर्चा, मोक्ष की चर्चा, इन सब की चर्चा फिर से मैं करना चाहता हूँ। मना मनाग भूयोपि चिंतिते, मनाग माने होता है थोड़ा सा थोड़ा सा, जैसे हमारे हेमचंद जी का पूरा व्याख्यान हो जाता है, उसके बाद में बोलते हैं मैं आपसे और थोड़ी सी बात आखिरी में कहूं, पांच मिनट मना। अरे एक घंटे का व्याख्यान का आपको समय दिया, उतना आपने एक घंटे में नहीं कह पाए, और आप बोलते नहीं अब एक थोड़ा सा थोड़ी सी बात रह गई है, वो मैं अभी आप बहुत मर्म की है, बहुत मर्म की है, ऐसा बोल करके अपनी बात रखते हैं ना। ऐसे अमृत चंद्राचार्य ने भी कहा मैं भी थोड़ी सी बात आखिरी में रखना चाहता हूँ, मना भूयोपि चिंतिते, मैं थोड़ी सी चर्चा फिर से करता हूँ। और उन्होंने जब उनको चर्चा प्रारंभ करी, अनेकांत की जब व्याख्या करी, तो अनेकांत के दो अर्थ बताए। क्या बताया? अनेकांत के दो अर्थ बताए। एक तो है अनेक माने अनेक का सबसे छोटा अर्थ क्या होता है? अनेक का सबसे छोटा जो एक नहीं है वो दो है, अनेक है, जो एक नहीं है वो अनेक है, तो सबसे छोटा अनेक क्या होगा? सबसे छोटा अनेक होगा दो, और सबसे बड़ा। तो अमृत चंद्राचार्य ने ये दोनों अर्थों को अनेकांत में समराइज किया। उन्होंने कहा सबसे छोटा अर्थ है दो, तो परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना उसका नाम अनेकांत है। और दूसरा अर्थ उन्होंने कहा कि अनंत है अंत जिसमें, अनेक माने अनंत और अंत माने है गुण धर्म, अनेक है अंत जिसमें उसका नाम है अनेकांत। ऐसा अनेकांत की ये दोनों अर्थों की व्याख्या उन्होंने परस्पर विरुद्ध सतसत एक अनेक तत्त नित्य अनित्य आदि शक्तियों के आदि परस्पर विरोधी धर्मों के माध्यम से करी। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा, क्या लिखा उसके बाद में? उसके बाद में देखो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं, फिर आगे अपन थोड़ा पीछे चले जाएंगे। देखो उसके बाद उन्होंने ये ऐसा लिखा कि ज्ञान स्वभावी आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां उछलती हैं। क्या? अब इसकी व्याख्या करो, क्या व्याख्या है? ज्ञान स्वभावी आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर, आत्मा के भीतर नहीं कह रहे,
क्या फर्क है?
बहुत फर्क है। एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां उछलती, एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर, और ऐसे आत्मा में अनंत गुण हैं। और यदि उसकी व्याख्या भी हम करेंगे, गुरुदेव के व्याख्यानों में एक बात आती है, वो आप थोड़ा विचार करना उस पर, चिंतन करना इस विषय पर, उसमें ये बात आती है कि आत्मा की एक एक गुण में, एक एक गुण में अनंत अनंत शक्तियां हैं। वो एक गुण में अनेक गुणों का रूप है वो बात दूसरी, वो बात दूसरी। एक गुण के अंदर अनंत शक्ति है, ये बात गुरुदेव के व्याख्यान में बहुत आती है। अभी मैं उस पर उसकी बहस में नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको यह जरूर बता रहा हूं कि एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां उछलती हैं, उनमें से आत्मा की 47 शक्तियों का व्याख्यान आचार्य अमृतचंद्र देव के समय सार की आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट के आधार पर यहां पर अपन ने किया है। थोड़ा सा इसमें और क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। साधारणतया हम शक्ति गुण स्वभाव धर्म आदि को पर्यायवाची समझते हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इनमें भी भेद दिखाई देता है। सामान्य से हम लोग ऐसा कहते हैं कि शक्ति कहो, स्वभाव कहो, गुण कहो, धर्म कहो, सब एक ही बात है, लेकिन यदि हम बहुत सूक्ष्मता में जाएं, हमारे यहां पर अलग अलग नए हैं भाई साहब। एक स्थूल ने कहता है हाँ सब बराबर, सब एक ही बात है, एक ही बात है, लेकिन सूक्ष्म ने ऐसा कहता है कि नहीं फर्क है, दो नए हैं, ऋजु सूत्र में है एक, ऋजु सूत्र में एक स्थूल ऋजु सूत्र है और एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र है। स्थूल ऋजु सूत्र कहता है एकच है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र कहता है अलग अलग है, और सूक्ष्म ऋजु सूत्र के बाद में और भी नए शब्द नए हैं, समविरूढ़ नए हैं, एवं भूत नए हैं, ये सब नयों की यदि हम दृष्टि में जाएंगे तो बहुत बारीक बात इसमें आएगी ख्याल में। जैसे धर्मों की हम बात करें तो इसमें परस्पर विरोधी धर्मों को लिया जाता है, गुणों की बात हम करें तो आत्मा के इसमें अनंत गुणों की बात की जाती है, वो परस्पर विरोधी धर्मों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुणों की बात कर रहे हैं, आत्मा के अनंत गुण हैं। गुणों की बात करें तो उसके अंदर फिर स्वभाव की चर्चा आती है, स्वभाव ये गुणों से थोड़ा हटके है, क्यों? क्योंकि गुणों में तो स्वभाव, स्वाभाविक और वैभाविक दोनों परिणमन शामिल होते हैं, गुणों में स्वाभाविक परिणमन भी और वैभाविक परिणमन भी शामिल होते हैं। जब लेकिन हम स्वभाव की बात करते हैं तो इसमें जो है वो वैभाविक परिणमन नहीं आते हैं। इसके बाद यदि हम शक्ति की बात करें तो ये शक्ति कुछ और बात कहती भी है, ये शक्ति अकेले गुणों की बात नहीं कर रही है, शक्ति अकेले स्वभावों की बात नहीं कर रही है, शक्ति कह रही है पावर, पावर कि आत्मा की पावर क्या है, वो उसके माध्यम से ये शक्ति की चर्चा है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, ये 47 शक्तियों का जब से ये रजनी भाई ने हमको विषय दिया है तब से जो है खुमारी चल रही है 47 शक्तियों की। मैंने पिछले 2 महीने से तो 47 शक्तियों के मैं व्याख्यान सुन रहा हूं, भाई सचेतन भाई गुरुदेव के व्याख्यान सुन रहा हूं, रोज सुबह दूध लेने जाता हूं तो 1 घंटा घूम करके आता हूं तो, लेकिन अभी तक मेरी 20 शक्तियां हुई हैं, अभी उससे आगे बढ़ी नहीं है लेकिन इसका दौर चल रहा है, जब मौका आता है ये पूरा 47 शक्तियां इसमें इसका जो उसका मर्म है गुरुदेव के व्याख्यान के बाद में, उस पर जब हम और गहराई में जाते हैं उसके माध्यम से चिंतन करते हैं तो उसमें से और नए नए रहस्य उसमें सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं गुरुदेव श्री के व्याख्यान के माध्यम से, वो एक माध्यम बन जाता है जो हमारे चिंतन को आधार बनता है। तो ये शक्तियां जो हैं ये बड़ी बड़ी जोरदार पावर की बात है, हमारी अवस्था क्या है इट्स डिफरेंट मैटर, हमारी अवस्था क्या है ये दूसरी बात है, लेकिन हमारी शक्ति क्या है ये दूसरी बात है। मैं 1 किलो कोई सामान नहीं उठाता हूं, नौकर चाकर लगे हैं घर में बहुत, तो मैं 1 किलो नहीं उठाता हूं, लेकिन मौका आ जाए तो मैं वो 100 किलो का बोरा अपने पीठ पर रख सकता हूं। तो जो 100 किलो का बोरा है वो मेरी वो मेरी शक्ति है, और मैं 1 किलो भी नहीं उठाता हूं ये मेरी कमजोरी है, मैं करने को कुछ नहीं देखता हूं, प्रमादी हूं, नहीं करने को देखता हूं, लेकिन मेरी शक्ति क्या है तो मेरी शक्ति है। तो शक्ति में कुछ जो भाव है वो इसमें और भी आता है, थोड़ी सी इसकी चर्चा ये जो है ना अपनी गुरु चिंतन, इसमें मैंने तो सिर्फ नाम मात्र के लिए ये बात लिखी है, लेकिन अभय जी ने जो 47 नयों का इसमें व्याख्यान लिखा है उसमें उन्होंने और विस्तार के साथ भी, उन्होंने स्वभाव को अलग डिस्क्राइब किया, धर्मों को अलग डिस्क्राइब किया, गुणों को अलग किया, ये उनके उसमें भी आया है, तो आप वो भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा को अपन और आगे बढ़ाते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इनमें भी भेद दिखाई देता है, इनका विवेचन हम इन शब्दों का शाब्दिक विश्लेषण करके भी प्राप्त कर सकते हैं, माने यदि हम इनका शाब्दिक विश्लेषण करें, शक्ति स्वभाव, स्वस्य भाव इति स्वभाव है, अपनी आत्मा के जो भाव है ओरिजिनल भाव उसको स्वभाव कहते हैं, शक्ति गुण, गुण जो है वो उसके स्वरूप को डिस्क्राइब करते हैं, गुण के माध्यम से हम जो है उस द्रव्य की संरचना कैसी है, द्रव्य कैसी चीज है, वो कौन से भाव वाली है, उसमें कैसे गुण है, वो गुणों के माध्यम गुण कहते हैं। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने ली है अमृतचंद्राचार्य ने प्रवचन सार में 93 नंबर की गाथा की टीका में, उन्होंने लिखा कि द्रव्य किसे कहते हैं, उन्होंने द्रव्य को लिखा कि अन्वय वो द्रव्य है, नहीं नहीं वो गुण की व्याख्या होगी, मैं द्रव्य की, अन्वय वो द्रव्य है और गुण क्या है, अन्वय के विशेषण वो उसके गुण है, ऐसा लिखा है। अन्वय द्रव्य को कहते हैं और अन्वय के जो विशेषण हैं वो गुण हैं और अन्वय के जो व्यतिरेक हैं वो पर्याय हैं, ऐसी द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या 93 नंबर की गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने की है। तो इनका शाब्दिक विश्लेषण के माध्यम से भी हम इसमें जा सकते हैं। शाब्दिक विश्लेषण माने कि शब्दों में एक व्युत्पत्तियां होती हैं, व्याकरण से व्युत्पत्तियां की जाती हैं, शब्दों को तोड़ा जाता है। ये शक्ति शब्द जो है इसकी मूल धातु क्या है, स्वभाव शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्व और एक भाव। तो ये स्व की व्याख्या, भाव की व्याख्या, भाव क्या है, भाव किसे कहते हैं, जैसे तत्व है ना, तत्व शब्द, तत्व शब्द, ये तत्व शब्द जो है इसकी हिंदी करें, हिंदी क्या है बताओ, तत्व की हिंदी है भाव। वैसे संस्कृत भाव, संस्कृत शब्द भी है भाव, तस्य भावस्तत्त्वम्, उसका जो भाव उसे कहते हैं तत्व। तो ऐसे इसकी इसकी व्याख्या और शाब्दिक विश्लेषण करके भी हम कर सकते हैं। शक्तियों के द्वारा हम आत्मा की ताकत को विषय बनाते हैं, अतः शक्तियों के अंतर्गत हम आत्मा की कमजोरियों, दोषों, अपराधों, इसको विषय नहीं बनाते हैं। देखना, प्रमाण की दृष्टि से विचार किया जाए, प्रमाण की दृष्टि से विचार किया जाए तो आत्मा में कमजोरियां नहीं है, आत्मा में दोष नहीं है, आत्मा अपराध नहीं करता। ये जो राग द्वेष के भाव करता है आत्मा, ये आत्मा के अपराध हैं, ये आत्मा की कमजोरियां हैं, ये आत्मा के विभाव हैं, हैं आत्मा के, प्रमाण दृष्टि से विचार किया जाए। इसीलिए तो ये शक्तियों का व्याख्यान, यद्यपि शक्तियों के व्याख्यान में गुरुदेव श्री की यदि भाषा में हम कहें तो देखो, मैं आप एक वाक्य मैंने इसमें लिखा है, आप पढ़ना, पूज्य गुरुदेव श्री भी आचार्य अमृतचंद्र की शैली को अपनाते हुए शक्तियों के अंतर्गत केवल निर्मल पर्यायों को ही शामिल करते हैं, विकारी पर्यायों को नहीं। क्यों? क्योंकि विकार हमारी कमजोरी है, शक्ति नहीं। क्या कहना चाहता हूं मैं इसके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बड़ी विचित्र बात है, विचित्र बात किस अर्थ में कि पर्यायों का बंटवारा कर दिया, क्या कर दिया, द्रव्य में गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुण तो उसमें पूरे शामिल हो गए, अब नंबर आया पर्यायों का, कि अब इन पर्यायों का क्या करें। तो दृष्टि के विषय पर अपन ने पिछली गोष्ठी की थी, उसमें तो पर्यायों को पूरा उड़ा दिया था चार भावों से भिन्न होगी कर दिया था उसको, लेकिन जब 47 शक्तियों का व्याख्यान करते हैं तो गुरुदेव श्री बहुत मुखर होकर के कहते हैं इसमें कि ये 47 शक्तियों के व्याख्यान में पर्यायों का बंटवारा है। क्या बंटवारा है? कि जितना निर्मल परिणमन है वो तो ये शक्तियों के अंतर्गत शामिल है शक्तियों में, और जो जितना विकारी परिणमन है वो इसके बाहर कर दिया है, तो प्रमाण दृष्टि नहीं रही चेतन भाई, प्रमाण दृष्टि नहीं रही। क्यों? यदि प्रमाण दृष्टि रहती तो इसमें जैसे निर्मल परिणमन को शामिल किया है तो विकारी परिणमन को भी शामिल करना पड़ता, इसलिए ये भी एक नए दृष्टि हो गई। और गुरुदेव श्री की भाषा में यदि हम कहें, अथवा भरत भाई आए कि नहीं आए, भरत भाई की भाषा में यदि हम कहें, भरत भाई की भाषा में कहें तो ये दृष्टि प्रधान ज्ञान की शैली है। अब दृष्टि प्रधान ज्ञान में जाएगा कि ज्ञान प्रधान दृष्टि में जाएगा वो आप लोग थोड़ा समझना लेकिन ये एक एंगल बन रहा, क्या एंगल बन रहा है इसमें, ना तो वो सारी पर्यायों को शामिल किया जा रहा है लेकिन जो स्वाभाविकता है पर्यायों में, जिन स्वाभाविक परिणमन, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के लिए एक अलग से शक्ति बना दी आचार्य ने, क्या नाम है उसका, सर्वज्ञत्व शक्ति, केवल दर्शन, उसके लिए एक शक्ति है आत्मा में, नौमी शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। लेकिन मेरे में अल्पज्ञता भी तो है, एकाध शक्ति ऐसी भी तो होनी चाहिए थी, प्रति ज्ञान शक्ति, श्रुत ज्ञान शक्ति, अवधि ज्ञान शक्ति, मन पर्याय ज्ञान शक्ति। तुम शक्तियां सुना रहे हो कि हमारी महिमा कर रहे हो, हमारी कि हमारे दोषों का बखान कर रहे हो, हमारी कमजोरियों का बखान कर रहे हो, क्या बता रहे हो तुम? बोले साहब आप, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, हमको बिठा दो और फिर बताओ। इनको बहुत गुस्सा आता, ये क्या बता रहे? अच्छा तुमको नहीं आता क्या? अरे आता तो है, लेकिन यहां बताने लायक है क्या ये बात? क्या ये शक्तियों के माध्यम से वो आत्मा की ये पर्याय हैं आत्मा में, लेकिन आत्मा की पर्याय होने पर भी ये शक्तियों के व्याख्यान में से आउट आउट। किसको खड़ा कर दिया तुमने? ये आत्मा की महिमा नहीं बता रहा है, ये आत्मा की कमजोरियों को बता रहा है। इससे आत्मा की महिमा बढ़ नहीं रही है, बल्कि आत्मा की महिमा घट रही है।
अब सुकून होता है,
अब सुकून होता है। ऐसी देखो तो यहां गुरुदेव श्री ने भी वही देखना। एक बात मैं बताना चाहता हूं, निर्मल पर्यायों को क्यों शामिल किया बताओ। जो पर्यायों को एक बार निकाल ही दिया था तो पीछे उसकी तरफ फिर से मुड़ने की क्या जरूरत थी? अरे यदि हम उसको ना बताएं तो ऐसा लगेगा कि ये शक्तियां सिर्फ कहने के लिए हैं, प्रकट करने के लिए नहीं है। और ये किसी को प्रकट भी होती हैं, इसका कोई उदाहरण नहीं है हमारे पास में। ये शक्तियां प्रकट भी होती हैं, इसका हमारे पास में कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए हमने तो ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति, हवा में है क्या सब शक्तियां? हवा में नहीं है भाई साहब, ये सारी शक्तियों के प्रकट परिणमन। अरे आगे की केवल ज्ञानियों की बात जाने दो, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, उसको ये 47 शक्तियां आंशिक रूप से प्रकट हो जाती हैं। ये 47 सर्वज्ञत्व शक्ति जब होगी तब होगी, वो सर्वज्ञता केवल ज्ञान जब होगा तब होगा, लेकिन चौथा गुणस्थान होने से ही ये सर्वज्ञता आंशिक रूप से प्रकट हो जाती है। स्यादवाद केवल अज्ञाने वस्तु तत्व प्रकाशने भेद साक्षात असाक्षाच ये वस्तु अन्यतमं भवेत। स्यादवाद में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। किसमें? वस्तु तत्व प्रकाश ने, वस्तु तत्व का प्रकाशन करते हुए स्यादवाद में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो इसमें अंतर है बस वो प्रत्यक्ष परोक्ष का है, उसको गौण कर दो। उसको गौण कर दो। प्रवचन सार में एक 33 नंबर की गाथा है, हेमचंद जी आपने शायद एक बार याद दिलाई थी, 33 नंबर की गाथा है। वो गाथा तो बहुत जोरदार गाथा है, बहुत जोरदार गाथा है, 33 नंबर की गाथा। हमारे यहाँ पर मोदानी जी, हमारे यहाँ पर प्रवचन सार का चलता है, गुरुदेव श्री का हम लोग 15 मिनट का व्याख्यान सुनते हैं और उसके ऊपर घंटे भर तक उस पर फिर चर्चा करते हैं। 15 मिनट का व्याख्यान सुनते हैं, उसके बाद घंटे भर चर्चा करते हैं उस पर। तो ये 33वीं गाथा पर लगभग गुरुदेव के ढाई प्रवचन है, ढाई प्रवचन है, और लगभग इस पर चर्चा हमारे यहाँ 15 दिन तक चली भाई साहब, चेतन भाई 15 दिन तक ये 33वीं गाथा पर। क्या था उसमें? ऐसा लिख रहे हैं आचार्य, ऐसा लिख रहे हैं उसमें, हम भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा सारे लोका लोक को जानते हैं, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा विषय, लेकिन वो एक मिनट पंडित जी मेरे को मालूम है, एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मैं दूसरी बता रहा हूँ। जैसे केवल ज्ञानी भगवान सारे लोका लोक को जानते हैं, आचार्य देव उसके बाद में लिखते हैं हम भी, ऐसा लिख रहे हैं हम भी, अयम नहीं वयम, अयम माने ये नहीं, हम भी ऐसा आचार्य लिख रहे कि जैसे वो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं ऐसे हम भी जानते हैं, इसमें क्या अंतर है, इसलिए तुम इस अंतर को खत्म करो, ऐसा लिख रहे आखिरी में। क्या? तुम इस अंतर को खत्म करो, अंतर को मत देखो। यदि तुमको आत्मा की दृष्टि बनानी है तो केवल ज्ञानी परमात्मा और हमारे में क्या समानता है ये देखो, क्या असमानता है इसको देखने की जरूरत मत नहीं है कोई। अलम अलम ऐसा लिख रहे हैं आखिरी में, अलम बस करो, भेद करने से बस करो, भेद मत करो, ऐसा ये 47 शक्तियों का व्याख्यान है। देखिए जब हम आगम के आधार पर गुणों की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अंतर बताने की कोशिश की है, उसमें विकारी और अविकारी दोनों पर्यायों को शामिल करते हैं, गुणों की चर्चा करते हैं हम जैन सिद्धांत प्रवेश का से। आप चलो आगे तो द्रव्य की व्याख्या करी, फिर गुणों की व्याख्या करी, फिर गुणों की पर्यायों की व्याख्या करी, तो पर्यायों के दो भेद किए, ऐसे इसमें सब आता है। इसी प्रकार स्वभाव के अंतर्गत हम सिर्फ उसके पारिणामिक भाव को ही विषय बनाते हैं, किसमें? स्वभाव। यद्यपि तत्वार सूत्र की शैली में कहें तो ये जो पांचों भाव है ना भाई साहब, ये जो पांच भाव हैं ये जीव के स्वभाव हैं, तत्वार सूत्र से लिखा उसमें, औपशमिक छाई कौ भाव मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदयिक पारिणामिक उच्च। बोलो कहां लिखा स्वभाव उसमें? नहीं लिखा, स्वतत्वम, ये जीव के स्वतत्व हैं। और तत्व का क्या अर्थ है अभी बताया मैंने आपको, भाव। तो स्वतत्वम कहो या स्वभावम कहो, उसकी अपेक्षा से देखें तो ये भी स्वभाव है, स्वभाव है। लेकिन जब हम पारिणामिक भाव और इन पर्याय रूप चार भाव इनको देखते हैं तो स्वभाव अकेले जो है वो पारिणामिक भाव ही स्वभाव कहने में आता है। ये चार भाव चूंकि पर की उपाधियों से सहित हैं, किसी में कर्म के क्षय की उपाधि लगी है, किसी में कर्म के उपशम की उपाधि लगी है, किसी में कर्म के उदय की उपाधि लगी है, किसी में कर्म के क्षयोपशम की उपाधि लगी हुई है, तो ये उपाधिक भाव होने से ये जीव के स्वभाव नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय, उसमें छह की उपाधि लगी हुई है, इसलिए वो भी स्वभाव कहलाने लायक नहीं है। एकमात्र जो पारिणामिक भाव है जिसमें कोई कर्म की उपाधि नहीं लगती है वो पारिणामिक भाव ही स्वभाव कहने में आता है। इस प्रकार से धर्म के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें सत असत नित्य अनित्य एक अनेक आदि परस्पर विरोधी धर्म युगलों को विषय बनाते हैं, ये धर्म में करते हैं और इसके माध्यम से हम अनेकांत की सिद्धि करते हैं, ये विशेष बात धर्मों के माध्यम से। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रमाण दृष्टि से आत्मा केवल गुणों के समूह रूप ही नहीं बल्कि प्रमाण दृष्टि मैं दूसरी प्रमाण दृष्टि है, ये गुण पर्याय वाली प्रमाण दृष्टि नहीं है भाई साहब, इस प्रमाण दृष्टि में गुणों के समूह रूपी नहीं बल्कि शक्ति स्वभाव धर्म आदि सबके समूह रूप जो आत्मा है वो प्रमाण दृष्टि का विषय है, तो उसमें विकारी अविकारी पर्याय भी सब प्रमाण दृष्टि में शामिल हो जाती हैं। इसको अपन ने पढ़ा है, अब इसके बाद में एक बात और लिख रहे हैं आचार्य देव ने, इनका संस्कृत भाषा में बहुत ही सारगर्भित विवेचन और थोड़े से शब्दों में सूत्र रूप में किया है और उसी विवेचन को आधार बनाकर यहाँ संस्कृत के साथ उनका संधि विग्रह भी करा है हमने, आपको जो हम बताएंगे उसमें हम उसका संधि, आपको ये जो किताब है किताब में संधि विग्रह नहीं है, इसमें हमने सूत्र है माने 47 शक्तियों के 47 सूत्र हैं और उनका अर्थ उनकी एक परिभाषा उसके माध्यम से की है हिंदी में, लेकिन अभी जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे इसमें उसका संधि विग्रह भी बताएंगे और अन्वयार्थ भी बताएंगे। अन्वयार्थ का मतलब है उसके एक एक शब्द का क्या अर्थ होता है, उसके माध्यम से उसकी हम व्याख्या करेंगे। इसको पदच्छेद भी कहा जाता है, पदान्वय भी कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे नाम है। देखिए सबसे पहले हम आ रहे हैं 47 शक्तियों में तीव्रत्व शक्ति का। देखो मैं थोड़ा सा आपको 47 शक्तियों का एक टेस्ट कराना चाहता हूं। हम एक एक शक्ति की व्याख्या कल से प्रारंभ करेंगे भली, लेकिन आज मैं आपको 47 शक्तियों का एक संक्षेप में टेस्ट कराना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वभाव है, मेरी क्या सामर्थ्य है, मेरे क्या गुण हैं, धर्म धर्म है ना धर्म, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा धर्म में की जाती है। धारण जो धारण किया जाए, जो धरती उत्तमे सुखे, धर्म की व्याख्या है ना धर्म। धर्म किसे कहते हैं, जो धारण किया जाए, जो ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करता है वस्तु के अंदर, उसलिए उसको धर्म कहा जाता है। वो धारण करता है परस्पर विरुद्ध शक्तियों से। ऐसा लिखा है कि ये जो आत्मा है, ये जो वस्तु है, ये परस्पर विरुद्ध शक्तियों के द्वारा टिकी हुई है, वरना 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 नष्ट हो जाती। यदि इस आत्मा में अकेला नित्यत्व धर्म होता, अनित्यत्व नहीं होता, तो ये आत्मा खत्म हो जाती। यदि इस आत्मा में अकेले अनित्यत्व धर्म होता, नित्यत्व नहीं होता, तो ये आत्मा खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती। ये कैसे टिकी हुई है, बोले सत द्रव्य लक्षणम, सबके द्वारा टिकी हुई है। ये सत कैसे टिका हुआ है मालूम आपको? ये अकेले नित्यत्व के भरोसे टिका हुआ नहीं है। सत है वो उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत है। इसमें ये उत्पाद व्यय द्रव्य, इसके माध्यम से कितनी शक्तियां हैं मालूम आपको रजनी भाई? 47 शक्तियों में तीन शक्तियों में ये उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा है। तीन शक्तियों में कौन कौन सी? एक तो है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, उसका नाम ही है उत्पाद व्यय द्रव्य। अकेले उत्पाद शक्ति को अलग, व्यय शक्ति को अलग और द्रव्य शक्ति को अलग, ऐसी तीन शक्तियां नहीं बनाई भाई साहब, शायद हेमचंद जी साहब के पीछे, रमणीक भाई, रमणीक भाई। उत्पाद को अकेले शक्ति नहीं बनाई, व्यय को अकेले शक्ति नहीं बनाई, द्रव्य को नहीं बनाई। तोड़ के बना सकते ना 47 की, अपनी 50 हो जाती, अलग अलग बना देते तो। नहीं, ये उत्पाद ये द्रव्य, इसकी जो संरचना है, इसको एक के बिना दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता, एक से दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। अकेले उत्पाद को बनाने जाते तो रूठ जाती वस्तु, नाराज हो जाती, धमकी दे देती। काय की जैसे बच्चों की आजकल बातें नहीं मानते ना, वो बोलते मैं छत पे ऊपर जा करके कूद जाऊंगा, ऐसी वस्तु नाराज हो जाती, बोले मैं छत के ऊपर से जा करके कूद जाऊंगी, माने मैं नष्ट हो जाऊंगी यदि तुम मेरे को अलग अलग कर दोगे तो। उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत, युक्तम सत, एक साथ है तीनों, ऐसी उनकी संरचना है। ये उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत वाली एक शक्ति है, इसमें उत्पाद व्यय द्रव की चर्चा है। दूसरी इसके बाद तुरंत बाद एक शक्ति है परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति में आचार्य ने फिर उत्पाद व्यय द्रव की चर्चा करी। इसके बाद में और बिल्कुल आखिरी में एक 45 नंबर की शक्ति है, उसका नाम है अपादान शक्ति। छह कारकों की शक्तियां हैं, एक 45 नंबर की शक्ति है, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा फिर करी आचार्य ने। तीन जगह उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा है, अकेले उत्पाद व्यय ध्रुवत्व में ही नहीं, परिणाम शक्ति में की चर्चा, उसके बाद में अपादान शक्ति में फिर की चर्चा। बताऊं मैं चर्चा आपको करा दूं, इसमें निकालने में थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा, वैसे निकाला जा सकता है। देखो 18वीं शक्ति है अपनी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, देखिए क्या है ये शक्ति, उत्पाद विध्रुवत्व शक्ति। ये कह रही है क्रमाक्रम वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। इसका संधि विग्रह नीचे देखो, क्रम अक्रम वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। इसकी हिंदी इसके बाद वाले उसमें स्लाइड में है। पहली क्या है, क्रम वृत्ति अक्रम वृत्ति। क्रम वृत्ति उत्पाद व्यय की प्रतीक है, अक्रम वृत्ति ध्रुवत्व की प्रतीक है। ऐसी क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति लक्षण वाली संयुक्त रूप से लक्षण वाली ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। आत्मा में यदि उत्पाद व्यय ना हो तो उसका क्रम वर्तित्व समझ में नहीं आता है, क्रम वर्तित्व सिद्ध नहीं होता। और यदि उसमें ध्रुवत्व ना हो, यदि उसमें ध्रुवत्व ना हो तो उसकी अक्रम वृत्ति समझ में नहीं आती है। पर्यायों की सिद्धि उत्पाद व्यय के द्वारा होती है, गुणों की सिद्धि द्रव्य के द्वारा होती है ऐसे। और गुण पर्याय वत द्रव्यम है, इसमें एक पूरा वस्तु की सिद्धि करने की बात है। इसके बाद में जो दूसरी शक्ति है वो परिणाम शक्ति है। इसमें देखो उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे आ रहा है, द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्ययोत्पाद आलिंगित वाह सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्र मई परिणाम शक्ति। वाह इसका संधि विग्रह देखो, द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्र मई परिणाम शक्ति। तोड़ने से हमको थोड़ा विषय समझने में सरलता हो जाती है, संधि विग्रह कर देवे। अच्छा बताओ उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति अब भी आपको बताइए, एक मिनट पहले फिर से कहो तो बताता हूं, थोड़ा देख लो अच्छे से इसको। सब लोगों को से प्रश्न है ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें और ये जो दूसरी है परिणाम शक्ति, इसमें क्या अंतर है? हाथ ऊंचा करिए जिसको अंतर समझ में आ गया हो, फिर से दिखाऊं बोल के बताता हूं। क्रमाक्रम वृत्ति व्रत, इसमें एक शब्द छूट गया है, छूट गया एक शब्द, क्रमाक्रम वृत्ति वृत्तित्व लक्षणा ऐसा शब्द है। वृत्ति शब्द डबल है, मूल में देखना आप, मूल में आपको इसमें मिल जाएगा शायद। क्रमाक्रम वृत्ति वृत्तित्व लक्षणा है, इसमें एक शब्द छूट रहा है। मिल गया, इसमें भी वृत्तित्व अकेला है लेकिन शायद मूल में आप देखना वृत्ति वृत्तित्व लक्षणा है, दो बार वृत्ति है। क्रमाक्रम वृत्ति वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, इसमें इसमें और दूसरी है परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति में क्या आया, द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्ययोत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम। शाबाश, मेरे को मालूम नहीं किसने बोला है, दिखाई मैंने देख नहीं पाया लेकिन शाबाश तो दे दी मैंने भारती ने। और बोलिए और बोलिए, अकेले अकेले देखना, अकेले द्रव्य की बात नहीं है, उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति का नाम है उत्पाद व्यय द्रव्य। और परिणाम शक्ति कहती है नहीं द्रव्य व्यय उत्पाद उत्पाद व्यय द्रव्य ये एक क्रम है। और बोलते हैं इस क्रम में कोई तुम रूढ़ मत हो जाना, ये क्रम कोई बिल्कुल इस क्रम का ऐसा एकांत मत करना कि ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्य है और मैं कहूं व्यय उत्पाद द्रव्य तो तुम लड़ने मत आ जाना। अरे तुमको पंडित जी तुमको कुछ नहीं आता, तुमको मालूम ही नहीं है उत्पाद व्यय द्रव्य है कि व्यय उत्पाद द्रव्य है। यहां तो कह रहे हैं परिणाम शक्ति कह रही है द्रव्य व्यय उत्पाद उसका कारण भी है। चेतन भाई क्या कारण है? देखो बहुत बढ़िया रीजन दिया उन्होंने, उन्होंने कहा द्रव्य स्वभाव भूत। ये जो द्रव्य है उसके स्वभाव में मूल में कौन रहता है? ध्रुवता रहती है या उत्पाद भी रहता है? मूल में कौन रहता है? अनादि काल से कौन है, अनंत काल तक कौन है? हाँ जी बोलिए।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ में रहते हैं।
नहीं, राजनीति की चर्चा ये अपने प्रमाइसेस के बाहर। क्या बोला? द्रव्य। और मजेदार बात तो ये है हेमचंद जी, इसने उत्पाद व्यय को भी पलट दिया। व्यय उत्पाद है, उत्पाद व्यय नहीं है, व्यय उत्पाद है। क्यों?
जो सबसे पहले,
अरे पहले व्यय होगा फिर उत्पाद होगा कि पहले उत्पाद हो जाएगा फिर व्यय कराओगे? बोलता हूँ है तीनों एक साथ। लेकिन लेकिन पूर्व पर्याय का व्यय उस पर ये उत्तर पर्याय का उत्पाद टिकेगा ना? बीजेपी सत्ता ना छोड़े कुर्सी ना छोड़े, भाई साहब आपकी बात। बीजेपी कांग्रेस सत्ता ना छोड़े तो ये बीजेपी कैसे बैठेगी आगे? उसको छोड़ना जरूरी है ना। तो व्यय पहले देखना, ये पहले बाद में कहने में भेद है, लेकिन हमारी कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। प्रधानमंत्री मर जाए तो उसकी घोषणा तब तक नहीं होती है जब तक नए प्रधानमंत्री की घोषणा ना हो जाए। मर जाए, इंदिरा गांधी मर गई थी, उसके बाद में दो दिन तक के कितने दिन तक कितने टाइम तक के उसकी घोषणा नहीं की थी। जब वो नया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही हमारी आत्मा का की जो पर्याय की सीट है ना, उस पर्याय की सीट में कोई ना कोई बैठे। पूर्व पर्याय जब तक थी तब तक पूर्व पर्याय थी, अब उसका व्यय हुआ तो उत्तर पर्याय, ये व्यय और उत्पाद दोनों का एक समय। क्या बात है? तो द्रव्य देखना, द्रव्य स्वभावभूत द्रव्य, उसके बाद क्रम आया व्यय का, उसके बाद क्रम आया है उत्पाद का। और ये जो व्यय और ये जो उत्पाद हुआ है ये स्वभाव भूत द्रव्य पर आधारित है। जो द्रव्य में ना हो ऐसा कोई उत्पाद हो नहीं सकता, इसलिए स्वभाव भूत उसको भी स्वभाव भूत कहा। द्रव्य स्वभाव भूत, द्रव्य व्यय उत्पाद, इन तीनों से आलिंगित वस्तु की संरचना कैसी है देखो तो सही कि ये तीनों से ये आलिंगित है, तीनों से, इनमें तीनों में से किसी एक को छोड़ते नहीं बनता है। इससे कुछ ज्यादा आलिंगित है, इससे कुछ कम आलिंगित है ना, तीनों से आलिंगित। सदृश विसदृश रूप, यद्यपि इसमें सदृशपना और विसदृशपना आता है, सदृशपना द्रव्य को बताता है, विसदृशपना उत्पाद व्यय को बताता है, लेकिन ये जो परिणाम शक्ति है ये सदृश विसदृश रूप है। परिणाम अकेले विसदृशता को नहीं बताता है। परिणाम क्या बोला? मति ज्ञान की पर्याय नष्ट हुई, व्यय हुई। श्रुत ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ, परिणाम शक्ति। बताओ इसमें सदृशपना है कि विसदृशपना है? मति ज्ञान का व्यय, श्रुत ज्ञान का उत्पाद, बोलो सदृशपना के विसदृशपना? ये हमारे रमेश भाई ने जवाब दिया, यदि ज्ञान की तरफ से देखो तो मति ज्ञान भी ज्ञान रूप और श्रुत ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप, इसलिए दोनों में सदृशता है, लेकिन मती बनने का अभाव हुआ है, श्रुत बनने का उत्पाद हुआ है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो ये विसदृश रूप, लेकिन ये सदृशता विसदृशता एक ही परिणाम है। सदृशता का परिणाम अलग है और विसदृशता का परिणाम अलग है, ऐसे दो परिणाम नहीं है। दोनों मिलकर एक अस्तित्व मात्रमयी वो परिणाम शक्ति एक अस्तित्व है। दोनों तीनों को मिला करके एक अस्तित्व है, उत्पाद यह द्रव्य तीन अस्तित्व नहीं है, तीनों को मिला के एक अस्तित्व है। सदृश विसदृश दो अस्तित्व नहीं है, दोनों को मिला करके एक अस्तित्व है, ऐसी ये परिणाम शक्ति है। इसके बाद में जब हम 45वीं शक्ति में जाते हैं तो 45वीं शक्ति भी उपादान शक्ति को बता रही है, और उस उपादान शक्ति में फिर से उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा हुई है, और उसमें ये कहा कि उत्पाद व्यय से जो आलिंगित परिणाम है में भाव है उसका व्यय होता है, उसका व्यय होता है। लेकिन उसके बाद भी ध्रुवता का व्यय नहीं होता है, ऐसी अपादान शक्ति है। अपादान शक्ति के माध्यम से वो पर्याय उसी द्रव्य में से आई है, लेकिन उसमें कुछ अंश व्यय का है, व्यय का है, और कुछ अंश ध्रुवता का है, माने व्यय का नहीं है, ऐसी अपादान शक्ति है। जैसे पेड़ पे से आम गिरता है ना, पेड़ पे से आम गिरा सर, तो पेड़ पे से आम गिरा ये अपादान का कार्य माना जाता है, ये अपादान का उदाहरण माना जाता है। पेड़ से आम गिरा वो है ना, क्या बोलते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना इसमें, पंचमी विभक्ति का, तो अपादान में पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इसमें क्या होता है कि एक चीज को अलग भी होना चाहिए लेकिन एक चीज कायम भी रहना चाहिए। यदि एक चीज अलग होती है और उसी के समय दूसरी चीज कायम रहती है तभी अपादान का प्रयोग है। तो वो पर्याय का, एक पर्याय का व्यय होकर के नई पर्याय का उत्पाद हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो द्रव्य स्वभाव है वो ध्रुवता से कायम है, उसका ना व्यय हुआ है और ना उसका उत्पाद हुआ है, ऐसा ही अपादान शक्ति है। ऐसी ये तीन शक्तियों में उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा है। 47 शक्तियों की संक्षिप्त चर्चा करना था, लेकिन कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी अपन यहीं पर, अपना समय हो गया है, विराम देते हैं। अब चेतन भाई आएंगे।
बुक ऑफ हम आउस है।